الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تبارك وتعالى قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وقال الله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاري وعن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور دور دور لوگ سننے والے میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں الحمدللہ ہمارا وینزڈے کا درس ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو سنتے ہیں اور وہ وینزڈے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وینزڈے آتا ہے تو ہمیں کچھ نئی بات قرآن اور حدیث کی سمجھنے کی ملتی ہے نیشنل اور انٹرنیشنل مکسلر کے ذریعے سے لوگ سنتے ہیں ویب سائٹ پر بھی لوگ سنتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ آپ لوگ یہاں مدرسے میں تشریف لائی ہو اور بہت سارے لوگ الحمدللہ دور دور تک ساؤتھ افریقہ کینیڈا میں انڈیا میں بہت سارے جگہ پر لوگ سنتے ہیں دبئی میں اور یہاں یو کے میں مکسلر کے ذریعے سے سارے تو آ نہیں سکتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے ایک انتظام کیا ہے لوگوں کے لیے سننے کا اور کئی لوگوں نے اپنی زندگی ماشاءاللہ بدلی ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو بات کہی جائے عمل کی توفیق عطا فرمائے صحیح سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے مسلسل تین یا چار جو وینزڈے تک ہم نے دعا کے اوپر بات کی آج ہم بات کرتے ہیں اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرنا اور سخاوت اور نیک کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا اس پر ہم بات کریں گے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے इस बाब में एक ऐसी आयत ले आए हैं कि जिससे इंसान को यकीन पैदा हो ही जाता है। खर्च करने के बाद दोबारा उसको खर्च किए हुए पैसे के कई गुना मिलने का यकीन पैदा हो जाता है। कुरान करीम की ये आयत करीमा सूरतुस सबा की है, आयत नंबर 39 है, जिसको इमाम नबी फरमाते हैं। आयत का तर्जुमा यह है कि तुम जो चीज भी खर्च करोगे वो उसका तुम्हें बदला देगा, यानी अल्लाह उसका तुम्हें बदला देगा। आयत का मतलब यह है कि आदमी जो कुछ भी अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के रास्ते में नेक काम में खर्च करते, चाहे एक पैनी हो, चाहे एक पैनी हो, चाहे आगे रिवायत बुखारी शरीफ की है एक खजूर हो, खजूर का एक दाना हो, लेकिन मकसूद अल्लाह को राजी करना है, ये शर्त है। तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसका बदला कभी दुनिया में और कभी आखिरत में और कभी दोनों जगह में अता फरमा देते हैं। जितना आदमी खर्च करता है इतना ही अल्लाह की तरफ से बदला मिलता रहता है। और वैसे भी बुखारी शरीफ में है कि अगर कोई आदमी दो जोड़े अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, दो जोड़े का मतलब दो चीज, दो कपड़े, दो किस्म के खाने, या दो पाउंड, दो डॉलर, दो दिरहम, दो पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करे ना, तो अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब फरमाते हैं कयामत के दिन जन्नत का हर दरवाजा उसको बुलाएगा, जन्नत का हर दरवाजा, बुखारी, हर दरवाजा उसको बुलाएगा, आ मेरे अंदर से जन्नत में दाखिल हो जाए, वो भी बुलाएगा, ये दरवाजा, ये दरवाजा, ये दरवाजा, आठ दरवाजे है ना, सारे दरवाजे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कौन लोग होंगे, फरमाया अल्लाह के हबीब ने अबू बकर तुम भी उन्हीं लोगों में से होते हैं, तुम भी उन लोगों में से, कि हर दरवाजा तुम्हें बुलाएगा, दो जोड़े, इसका क्या मतलब हुआ, जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो गया ये तो जन्नत तो मिली गई इसको, अब जन्नत के महल तैयार करो। और वो क्या है, सही हदीस में है कि अगर कोई 10 मरतबा कुल हू अल्लाह हर पढ़े तो जन्नत में एक महल है, 20 बार पढ़े तो दो महल है, 30 बार पढ़े तो तीन महल, वो तो कयामत के दिन पता चलेगा, आज नहीं, जन्नत में जाएगा ना तब, काश के। इसीलिए हदीस में आता है कि जन्नत में जाने के बाद किसी को किसी किस्म का रिग्रेट, पछतावा नहीं होगा, सिवाय उन लोगों को जिन्होंने दुनिया में अपना वक्त जाये किया, वो कहेंगे काश के हम और अल्लाह का जिक्र करते तो हमारा दर्जा जन्नत में और ऊंचा होगा, वरना जन्नत में और कोई परेशानी सिवाय उसके। तो जो आदमी जितना ज्यादा पढ़ेगा उसके माल इतने ज्यादा हो जाएंगे। अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते अल्लाह के हबीब तब तो फिर हमारा मसला ही हल है, बहुत सारे, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। तो दो चीज अल्लाह के रास्ते में दे दे तो कितनी बड़ी नेमत है। यहां फरमाया कि अगर कोई आदमी दुनिया में खर्च करता है फहुआ युखलिफु, कुरान में क्या है, फहुआ युखलिफ, खलफ किसको कहते हैं, खलीफा, एक आदमी बादशाह का इंतकाल हो गया है तो उसका नाइब जो वो खलीफा है उसको नाइब बना दिया जाता है, भाई अब तू आ जाएगा, एक एक आलिम के जाने के बाद दूसरा आलिम, एक आदमी के जाने के बाद दूसरा आदमी टेक ओवर करता है, शेख के जाने के बाद उसका खलीफा टेक ओवर करता है। अल्लाह ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाते हैं वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफ, जो कुछ तुम खर्च करोगे
तो उसका खलीफा वापस आ जाएगा। क्या मतलब? यानी उस खर्च करने पर अल्लाह तुम्हारी मौत नहीं आएगी, उससे पहले उसका बदला दुनिया में दे ही देगा। ये कयामत में तो मिलने वाला ही है, इसलिए खर्च करने से कभी ना घबराओ। खर्च करने से सही जगह में, अपने बीवी बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने मां बाप पर, अपने भाई बहनों पर और अपने गरीब रिश्तेदारों पर खर्च करो। इसीलिए वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है, गाय हो, बकरी हो, ऊंट हो वगैरह, जितना उसका खर्च होता है इतना ही उसका बदला और पैदावार में इजाफा हो जाता है आदमी किया। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब से अरबों ने ऊंटों की सवारी बंद कर दी उस वक्त से उसकी पैदावार घट गई। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है, अल्लाहुम आती मुनफिकन खलफा, यही लफ्ज है वहां भी, व आती मुमसिकन तलफा, मुस्लिम शरीफ में ही रिवायत। ए अल्लाह, खर्च करने वाले को उसका बदला अता फरमा और बखीली करने वाले का माल जाया करना खत्म फरमा। ये दो फरिश्ते रोजाना दुनिया में आकर दुआ और बद्दुआ करते हैं, या एक फरिश्ता हो रोजाना, यानी इसमें अल्लाह दो फरिश्ते आते हैं, या एक फरिश्ता आता है और ये ऐलान करता है, या अल्लाह आज जो आदमी खर्च करे उसको उसका बदला अता फरमा, और जो खर्च न करे उसके माल को जाया फरमा। ये सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की। इस हदीस को मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सातवीं जिल्द में भी 303 पेज के ऊपर नकल की है। मालूम होता है कि आदमी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए जितना हो सके। खुद अल्लाह फरमाते हैं, जो कुछ तुम खर्च करते हो अपने ही फायदे के लिए है। अल्लाह कह रहे हैं, वमा तुनफिकु मिन खैरिन फली अनफुसिकुम, वो तेरे लिए है। जो तू खर्च करता है वो तेरे लिए है, वो गरीब को नहीं दे रहा तू, उस गरीब के सदके अल्लाह तेरी मगफिरत कर रहा है, वो तेरे लिए है। उस गरीब को देने से अल्लाह तेरे घर में बरकत दे रहा है, उस गरीब को देने से अल्लाह तेरे घर से बीमारियों को दूर कर रहा है, उस गरीब को देने से आने वाला एक्सीडेंट होने वाला अल्लाह हटा देता है, उस गरीब को देने से मुहलिक कुन बीमारियां, इंसान को हलाक करने वाली, उससे अल्लाह तेरी हिफाजत फरमा देता है, उस गरीब को देने से आइंदा आने वाली सारी मुसीबतें अल्लाह तुझसे दूर कर देता है, और उस गरीब को देने से अल्लाह तेरी मौत को ईमान पर देता है। ये अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाया, जो आदमी खर्च करता है उसकी मौत ईमान पर आती है। किस पर आती है? ईमान पर, और अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देती है। तो अल्लाह फरमाते हैं, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलियन्फुसिकुम, जो कुछ तुम खर्च करते हो अपने ही फायदे के लिए, वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, और तुम खर्च ना करो मगर अल्लाह को राजी करने के लिए। फायदा तुम्हारा ही होगा लेकिन मकसद क्या होना चाहिए? अल्लाह को राजी करना, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है, ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा। अगर शो ऑफ के लिए खर्च किया, मैंने खर्च किया और 50 आदमी को मैंने बटला दिया, क्या फायदा होगा? हाँ, अगर किसी को बतलाया इस नियत से कि वो भी खर्च करे तो अलग बात है, लेकिन इसलिए बतलाया कि ताकि मैं लोगों को पता चले कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो दुनिया में भी कुछ नहीं मिलेगा, तेरा भी फायदा नहीं और आखिरत में भी कुछ नहीं मिलेगा। ये लगे और अल्लाह आगे फरमा रहे, वमा तुनफिकु मिन खैरी वफैलैकुम, और जो कुछ तुम माल में से खर्च करते हो ये सब पूरा के पूरा तुमको अल्लाह वापस दे देगा। अल्लाह कमी करके नहीं देगा,
रामिया बसरिया गया, रोटी आई ना, तो क्या कहा कितनी है, कहा नाइन, नहीं मेरी नहीं किसी और की है, जाओ दे दो। थोड़ी देर के बाद एक और आया, कितनी है गिन लो, कहा दस, कहा लाओ। तो काम वाली ने बांदी ने कहा ये क्या बात हुई कि नौ को कबूल नहीं किया दस को, हमें अल्लाह ने कुरान में कहा एक देगा तो दस मिलेगा, ये नौ मेरी नहीं है, दस अल्लाह की तरफ से वो मेरी है। ऐसा नहीं कि भाई एक आदमी बयान में बैठा हुआ था और उसने सुन लिया एक का दस मिलेगा और दस का सौ मिलेगा, एक का दस, दस का सौ, तो कुरान का हुक्म है मन जा बिल हसरती फलहु अशरु अमसालिया, तो उसके पास थे भी दस ही रुपये, उसने कहा तो अच्छा सस्ता सौदा है, दस दूंगा तो सौ तो मिलने वाला है, मेरा तो काम ज्यादा हो जाएगा। अब ये दस रुपये खाली उसके पास थे, उससे ज्यादा नहीं थे, उसने दे दिए सौ के इंतजार पर। अब सौ के इंतजार पर दे दिए लेकिन अभी आता ही नहीं, सौ कब आएगा, इंतजार करते करते पैसे भी नहीं कुछ खावे पीवे, वो पैसे भी खत्म हो गए, भूखे भूखे उसको क्या लग गया, डस्ट लग गया, डायरिया लग गया, इंतजार में परेशानी में उसको डायरिया लग गया। एक बार गया जंगल में, दो बार गया, तीन बार गया, चार बार गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसके बाद किसी ने आकर उसको सौ रुपये दिए, भाई ये तुम्हारे लिए है। तो उसने दूसरी फ्राइडे को मौल साहब को आकर कहा कि तुम बयान करते हो लेकिन मुकम्मल नहीं करते हो, पूरा बयान किया करो। मौल साहब ने कहा ये कैसे, मैंने तो कहा था कि एक दस दे तो सौ मिलेगा, एक दे तो दस मिलेगा। कहा नहीं नहीं नहीं, ये भी कहा करो कि दस दे तो सौ मिलेगा लेकिन बीच में डायरिया लगेगा। समझना ही बात, बीच में डायरिया भी लगेगा, आपने ये तो कहा नहीं, अगर ऐसा होता मैं देखता ही नहीं कि डायरिया की बात है यहां तो। कहा बात मुकम्मल नहीं करते, पर मैं भाई सबर से काम लो, अल्लाह कभी पहुंचा देता है, अल्लाह के यहां बिल्कुल बात सच है, अल्लाह खुद कह रहा है वमा तुन्फिकू मिन खैरी वफ़ैलैकुम, वफ़ैलैकुम के माना मुकम्मल दे दिया जाएगा, और मुकम्मल का क्या माना है, एक देगा तो दस, दस दे तो सौ, और इखलास के साथ होगा तो एक है सत्तर के बराबर, और इखलास ज्यादा है तो एक है सात सौ के बराबर, और इखलास उससे ज्यादा है जी, तो अल्लाह फरमाते हैं बेगैर हिसाब, पता नहीं किधर से आ रहा, किधर से आ रहा। ये अल्लाह फरमाते हैं वान तुम ला तुज़लमून, मैं बिल्कुल कमी नहीं करूंगा, देखा अल्लाह कह रहे मैं बिल्कुल कमी नहीं करूंगा। मुसलमान जो कुछ भी सदका और खैरात देता है अल्लाह को राजी करने के लिए, बस मेरे अल्लाह के लिए मैंने निकाला है, मेरा अल्लाह राजी हो जाए जी। इसलिए कि जब भी कोई सदका निकालता है तो सबसे पहले ये सदका गरीब के हाथ में नहीं जाता, ये पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, अल्लाह उसको कबूल करते हैं, फिर ये गरीब के हाथ में जाता है। इसीलिए एक ज़ईफ रिवायत है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला शी वाज़ वॉशिंग कॉइन, दनानीर जो दिरहम जो है उसको धो रही थी। आप लोगों ने कभी कॉइन धोए, नहीं धोए, कॉइन धोकर दिए आपने, नहीं दिए, वो कॉइन धो रही थी, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा आयशा क्या कर रही हो, कॉइन धो रही हो, फरमाया आपने तो बताया है कि अगर ये माल पहले अल्लाह के हाथ में जाता है फिर गरीब के पास, मैं जरा बराबर साफ कर लूं ताकि अल्लाह मेरा माल को कबूल कर ले। और ये आयशा उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ थी, कितनी इंटेलिजेंट और समझदार थी, जब भी कोई फकीर दरवाजे पर आता था, जब भी कोई साहिल आता था उसको देती थी, अगर वो कोई दुआ देता था तो वापस उसकी दुआ के जवाब में दूसरी दुआ देती थी। किसी ने पूछा उम्मुल मोमिनीन आप पैसे भी देते हो और ऊपर से दुआएं भी देते हो, फरमाया हाँ मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे दुआ दी है तो मैंने उसकी दुआ के बदले में दुआ दे दी, अब मेरे पैसे बाकी रहेंगे अल्लाह के यहां, अल्लाह मुझे बदला देगा। अगर उसने पैसे के बदले में मुझे दुआ दे दी तो मेरी तो बस
खत्म हो गई बात, इसके पास अल्लाह जो मुझे देगा वो कोई दुनिया में दे नहीं सकता है, तो मैंने उसको दुआ का बदला भी दे दिया और मेरी कॉइन का जो है वो अल्लाह पाक मुझे देगा। हम किसी से शुक्र की उम्मीद नहीं रखते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउ वला शुकुरा, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउ वला शुकुरा। हम लोग किसी से भी शुक्र का, अल्लाह हमारा बहुत बड़ा है वो हमें बदला देने वाला है। फरमाया जो आदमी खर्च करेगा तो उसका बदला अल्लाह दुनिया में भी देगा आखिर। बसरीन कहते हैं इस बात की तरफ इशारा है, जो कुछ तुम करते हो तो क्या वजह है कि उसका एहसान अपने फायदे के लिए फकीर पर रखते हो, उसका एहसान अपने फायदे के लिए फकीर पर रखते हो। जब अपने फायदे के लिए है तो सदका और खैरात तो अच्छा मान देना चाहिए, फायदा तो तेरा है, फकीर पर क्या एहसान किया तूने, किसी साहिल पर तूने क्या एहसान किया, फायदा तो तेरा है। कि अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि जो खर्च करेगा नेक इखलास के साथ वो तेरा फायदा है, उसमें जिस गरीब को तूने दिया है, जिस भाई बहन को दिया है, जिसको भी दिया है तुमने, उसमें तूने उस पर कोई एहसान नहीं किया, अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया। एक तो तेरा माल अल्लाह ने कबूल किया और उस माल के बदले अल्लाह ने तेरे लिए कितनी नेमतें ना फरमाई, बीमारियां खत्म की, परेशानियां खत्म की, मुसीबतें खत्म की, घर में बरकत होगी, फला और फला और फला बहुत कुछ होने वाला। इसलिए अच्छा माल देना चाहिए। कैसा भाई? अच्छा। अब इस पर टाइम नहीं बना, बहुत सारे वाकयात हैं। अच्छे अच्छे माल कौन सा होता है? ये तो सहाबा और सहाबियात की किताब पढ़ो ना। इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट किया करता हूं कि हयातु सहाबा को पढ़ा करो। हयातु सहाबा इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, उसको जरूर पढ़ो, उसको अपने घर में तालीम करो, हयातु सहाबा की तालीम करो। इसी तरह फजाइल आमाल की भी तालीम करो अपने घर में, उसमें भी जकात के लिए भी है, यानी नमाज के लिए भी, रोजे के लिए, उसमें खास कर अल्लाह के रास्ते में फजाइल सदकात है ना, दूसरी जिल्द उसमें सारी बातें लिखी हुई कि खर्च करने से क्या क्या मिलता है, सब कुछ। अपने बच्चों को बताओ कि देखो बेटा खर्च करने से क्या क्या मिलता है, रोजाना 5 मिनट या 2 मिनट के लिए एक हदीस पढ़ लो फजाइल सदकात की या फजाइल अमाल की या हयातु सहाबा में से एक सहाबिया सहाबिया का वाकिया पढ़ लो, उससे घर के बच्चों के दिल में सहाबा और सहाबियात की मोहब्बत भी पैदा होगी और साथ में उनके दिल में अल्लाह के रास्ते में इबादत करने और खर्च करने का शौक और जज्बा भी पैदा होगा। ये हमारे अकाबिरीन किया करते थे कि अपने बच्चों को पैसे जाओ वहां दे दो, इस तरह आदत भी डालते थे। इसलिए के एक सहाबी फरमाते हैं, ब्लाइंड सहाबी थे, उनके बच्चे भी बड़े बड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने रूम से लेकर एक रस्सी को बांधा था बाहर तक, फ्राम दरवाजे तक रस्सी। जब भी कोई साइल आता था तो वो खड़े होते रस्सी को पकड़ते पकड़ते, क्योंकि वो ब्लाइंड थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रस्सी को पकड़कर दरवाजे के पास जाकर फकीर को दे देते थे। तो उनके बेटों ने कहा, अबू जी आपको तकलीफ होती है, आप वहां तक जाए गिर जाएंगे, ये हमें बतला दो, हम दे देंगे। तो फरमाया, नहीं, मेरी भी मौत आने वाली है, मेरी भी मौत आने वाली है, और मेरे और आपके आका ने बयान फरमाया, जो मैंने साबित फरमाते मैंने सुना है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उसकी मौत ईमान पर आती है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी मौत ईमान पर आए। बात मेरी समझ आ रही है ना? तो ये चीज है जो हमारे साहबा किराम ने हमें करके दिखाई। तो अब जो अल्लाह के रास्ते में दे तो एहसान न झुठलाओ, फायदा हमारा है, अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च करो। एक हदीस में आता है, तुम खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा, अनफिक तुम पर, तुम खर्च करो तुम पर अल्लाह खर्च करेगा। फरमाया उमर रजी अल्लाह ताला हजरत अबूबकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा से, ओ अस्मा थैली को खुली रखो, बंद ना करो, अपनी बैग को खुली रखो। क्या मतलब? खर्च किया करो, अगर तुम بند کروگی تو اللہ بھی اوپر سے بند کر دے گا. اور فرمایا گن گن کے نہ دو, تم گنو گی تو اللہ بھی تیرے لیے گنے گا. یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء, جو پہاڑ پر اللہ کے نبی کے لیے اور اپنے ابو کے لیے کھانے کو دوپٹے میں باندھ کر لے کر پہاڑ پر چلتی تھی غار میں, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق 3 دن تک چھپے ہوئے تھے, وہاں کھانا لے کر اوپر چلتی تھی. ابو جہل نے یہاں تماچا مارا سر کے اوپر اور وہ گر گئی اور ان کے سر سے خون نکلتا تھا. وہ اسماء ہے, صدیق کی بیٹی ہے, وہ بھی صدیقہ ہے. اسماء ان کو کہا کہ اپنی ٹھیلی کو کھلی رکھو, اتنے بکھیل نہ بنو, دیا کرو, کچھ نہ کچھ نکالا کرو, اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے کچھ نکالو گے تو ملے گا, بند کرو گے تو پھر کچھ ملنے والا نہیں. گن 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 کے بس اندر, نہ باہر جا رہے ہیں نہ بر رہے ہیں, گن کے رکھ رہے ہیں. اور بعضوں کو تو کیا ہے, گننے کی عادت ہے, ہر 2 ہفتے کے بعد گنتے واپس تاکہ دل کو تسلی ہو جائے. اس لیے جیب بھی اچھا ہے, یہ کفنی جار والوں کا جیب بھی دل کے اوپر رکھا ہے کہ پیسے یہاں رکھیں گے اب دل میں تسلی ہوگی. یہ جیب خالی ہے تو دل میں تسلی نہیں ہوتی ہے. اللہ فرمان دے کیا کہہ رہے ہیں, وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو خرچ کرو گے اللہ تمہارا بھلا کرے گا. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے لیے خرچ کرنا. اور پھر کیا کہا, جو خرچ کرو گے اللہ مکمل دے گا, مکمل دے گا اور کئی گنا دے گا, جیسا جیسا تمہارا اخلاص ہوگا ایسے عطا فرمائے گا. اور اللہ ایک جگہ فرماتے, وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے بے شک بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہاں خرچ کیا ہے, کیسے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے, کس نیت کے ساتھ کیا اللہ کو معلوم ہے, اللہ کی رضا کے لیے کیا یا لوگوں کو اس لیے دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں. کوئی بھی نیت ہو, صحیح ہو یا غلط, اللہ سب کچھ علیم جانتا ہے اور اس اعتبار سے بدلہ بھی ملے گا. اب میں اتنی کمائی کرتا ہوں پھر لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے دوں, نہ میرا دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا, ایسے خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہے. اور اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا, جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو وہ ضرورت سے زائد ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ تمہارے پاس ہے کم اور اسی کو دے دیا, تم کیا کرو گے, تم کیا کرو گے. جیسے بخاری شریف میں پرسوں ایک روایت گزری ہے, ایک عورت آئی صحابی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو تمہیں ہبا کرنا چاہتی ہوں, ہدیہ. دیا کا معنی کیا ہے, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے حبیب نے کوئی جواب نہیں دیا, سر نیچے کر لیا. پھر دوبارہ اس نے کہا, سر نیچے کر لیا. 3 بار کہا, سر نیچے کر لیا. ہو گیا 3 بار. اتنے میں ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا, اللہ کے حبیب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے شادی کر دو. اس عورت کی بچارے غریب صحابی تھے, مجھ سے شادی کر دو, بخاری شریف میں مجھ سے شادی کر دو. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا, مال ہے تیرے پاس, پیسے ویسے ہیں, یعنی اس کو تو مہر دینا پڑے گا, داوڑی کے پیسے ہیں. اللہ کے بھی کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ گھر جاؤ کچھ دیکھو, کچھ بھی مل جائے. چاہے حدیث میں ہے, ولو بخاتم حدید, لوہے کی انگوٹھی وہ بھی لے آؤ. لوہے کی انگوٹھی کون پہنے گا, لیکن فرمایا اگر وہ بھی ہو نا تو اس کو بھی لے آؤ, نکاح کر دوں. وہ گھر پر گئے تو ان کے گھر پر لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں, وہی پہنے ہوئے کپڑے تھے. جو 2 چادر تھی, اس زمانے میں چادر ہوتی تھی, ایک نیچے چادر لونگی ہوئی اوپر, وہی 2 چادر تھی, کچھ نہیں تھا, اتنے غریب صحابی تھے. تو فرمایا اللہ کے حبیب کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اب اللہ کے حبیب نے کوئی جواب نہیں دیا, کہا اللہ کے حبیب یہ 1 چادر ان کو دے دوں, 1 چادر میں ان کو دے دوں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تم کیا پہنو گے, پھر تم کیا پہنو گے, फिर अल्लाह के हबीब ने कहा तुम्हें कुरान याद है? हाफिज हो? फरमाया हाँ, फुना 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 सूरत मुझे याद है। फरमा जाओ मैंने तेरा निकाह कर दिया इस औरत के साथ इस शर्त पर कि तुम इनको क्या करना, कुरान शरीफ सिखाना, कुरान पाक को सिखाना। ये सिर्फ उन्हीं साहबी के लिए था। अब आजकल कोई कहे मैं आप इसे कुरान ऊपर मैं दावरी नहीं दूंगा उसको कुरान सिखाऊंगा, कर नहीं चलेगा, क्योंकि बेचारे गरीब साहबी थे, कुछ नहीं था उनके लिए खास। बास बास साहबा के लिए उनके जरूरत के मुताबिक अल्लाह ने फैसला कर दिया। ठीक है, जैसे एक साहबी आए और फरमा अल्लाह के रसूल क्या करो, रमजान थी और मैं तो बीबी के साथ मैंने जिमा कर लिया रोजे की हालत में। फरमाया 60 रोजे रखने पड़ेंगे, बीच में एक भी इधर उधर गड़बड़ नहीं, 60 रोजे बुखारी शरीफ में है। अल्लाह के रसूल 30 में तो यह मसला हो गया, 60 में क्या होगा, फिर और मसला हो जाएगा। तो फरमाया ऐसा करो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक गुलाम को आजाद करो। फरमाया गुलाम मेरे पास नहीं है, मैं खुद गुलाम हूं, मैं खुद गरीब हूं, मैं कहां से गुलाम लाऊंगा। मैं ऐसा करो जाओ 60 मिस्कीन को खाना रोजाना खिलाओ, रोजाना साथ। मेरे खाने के भाग में है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं, मैं कहां से लाऊंगा लोगों के लिए। बैठो इधर बैठो, बैठे अब कुछ भी नहीं है, ना गुलाम है और फांपे भी है, 2 महीने रोजे रखने में और मुसीबत हो जाएगी, और रखने पड़ेंगे दूसरे कितने, और इधर खाना भी नहीं है। इतने में कोई साहबी आए सदके का खजूर लेकर, फरमाया आओ इधर आओ, लो ये खजूर ले जाओ, जाओ गरीबों में तकसीम करो तुम्हारे लिए। फरमाया अल्लाह के रसूल ये तो मेरे लिए, मेरे घर पर कुछ नहीं, मैं किसको दूं, ये तो मेरे लिए। अल्लाह के हबीब पर जा, चल ले जा तेरे घर ले जा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर वो मसला आज हम पर फिट कर तो नहीं चलेगा, अल्लाह के हबीब ने सिर्फ उन साहबी के लिए राहत कर दी। चलो तो ऐसी सूरत बहुत सारे ऐसे वाकियात हदीस की किताबों में मिलते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जैसे उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब उनका इंतकाल हुआ तो ये बहुत रोने लगी। उम्मे सलमा बहुत रोटी थी, तो सुभान अल्लाह अजीब वाकिया भी है ये अबू सलमा का, तो पहले भी सुनाया था मैंने कि अबू सलमा सफर में थे, वापस आए सफर से तो देखा बेटा किधर गया, जवान बेटा था, तो बीवी ने कहा कि सफर से आए हैं थके हुए हैं, अगर मैं यूं कहूं कि इंतकाल हो गया है तो और परेशान होंगे, थके हुए उस जमाने का सफर तो थकने वाला, खाना भी नहीं खाएंगे परेशान हो जाएंगे। तो अपने शौहर को कहा कि वो सोया हुआ है, आराम में है, राहत में है, सुकून में है, यूं कह दिया। और उस रात में अपने बीवी के साथ जिमा भी किया, बीवी ने मना नहीं किया कि नहीं अगर मैं इंतकाल हुआ और तुम मुर्दा है और तुम ये कर रहे नहीं, शौहर की राहत का भी ख्याल किया कि कहीं ये बेचारे थके हुए हैं परेशान ना हो, खाना भी खिलाया, रात में जिमा भी हुआ अपनी बीवी के साथ। सुबह फजर से पहले पहले फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले थे, उस वक्त बीवी ने कहा अगर कोई तुम्हें अमानत दे, अगर कोई तुम्हारे पास अमानत रखे और वो अपनी अमानत को मांगे तो वापस करना चाहिए ना। फरमाया हाँ उसकी अमानत है उसको वापस कर दो। फरमाया बेटा हमारे पास अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह पाक ने उस अमानत को ले लिया है, यानी इशारा किया कि बेटे का इंतकाल हो गया। पर तुम मुझे कहा नहीं, फरमाया मैं कैसे कहूं, आपको तकलीफ होगी, सफर से आए हुए थके हुए खाना भी नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने आपको भी राहत दी और बेटे को तो अल्लाह की अमानत थी हमने पेश कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए ना, वहां जाकर वाकया बयान किया, अल्लाह के नबी ने अफसोस का इजहार किया और उसके बाद कहा कि आज रात तुमने जिमा किया है, उससे जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज़े कुरान होगा, और उस बच्चा हाफिज़े कुरान बना, जब बड़ा हुआ हाफिज़े कुरान बना, और उसके 7 बच्चे हाफिज़े कुरान बने, और उसकी नस्ल के अंदर 300 साल तक अल्लाह ने हाफिज़ और उलमा पैदा करवाए। कितने साल तक भाई, 300 साल तक। ये सबर का बदला है, वो उस माई के सबर का बदला है। हम तो 1 किलोमीटर दूर है, जल्दी आओ मसला है, यही तो बीवी कहेगी छोड़ो, ये उस सबर का बदला देखो। अल्लाह अकबर। तो ऐसे वाकयात है हदीस में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि भाई अगर तुम लोग खर्च करो, जरूरत से जायद हो तो खर्च करो, जरूरत तुम्हारी है तो फिर उसका सदका कर लिया, जरूरी नहीं है, अपने लिए अपने बच्चों के लिए रखो, बाकी जो है वो दो अल्लाह के रास्ते में। इसीलिए हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस आगे नकल कर रहे इमाम नवी, अय्युकुम मालु वारिसिहि अहब्बु इलैहि मिन मालिहि, कालू या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कौन है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज्यादा महबूब हो। क्या कह रहे हैं, तुम में से कौन है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज्यादा महबूब हो, अपने इनहेरिटेंस जो है उनका माल मुझे महबूब है अपने माल से, ऐसा कभी सुना तुमने? इंसान को अपना माल महबूब होता है, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, अब दूसरे की गाड़ी को मुझे क्या लेना देना, दूसरे की दुकान से मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों उससे मोहब्बत करूं, मैं क्यों उसकी दुकान से मोहब्बत करूं, बात समझ आ रही ना? तो साहबा से ये सवाल किया कि अय्युकुम मालु वारिसि, तुम में से कौन है जो अपने वारिस के माल से मोहब्बत करता है अपने माल से ज्यादा? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मा मिन्ना अहदुन इल्ला मालु हब्बु इलैही, या रसूलल्लाह हम में से हर शख्स को अपना माल ज्यादा महबूब है। आप सरासर फरमाया फइन्ना मालहु मा कद्दमा व मालु वारिसि मा अख्खरा। जवाब दिया बुखारी शरीफ में, फरमाया सुनो मेरे साहबाओ, इंसान का माल तो वो है जो उसने सदका करके आगे अपने लिए भेज दिया, बैंक ऑफ हियर आफ्टर में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक ऑफ हियर आफ्टर में, आखिरत की बैंक में उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, ये उसका माल है। मेरा माल तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, तेरा माल वो है जो तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च करके तेरी मौत से पहले तूने भेज दिया है अल्लाह के पास, ये तेरा माल है। क्यों? वो कयामत के दिन तेरा इंतजार, वो बैंक बोलेगी आखिरत की, आ तेरा माल ले जा। माल का क्या माना, उसका बदला अल्लाह ताला तुझे कई गुना देगा, वो कयामत के दिन होगा। फरमाया वो वारिस ही माखरा, और उसके वारिस का माल कौन सा है, पर वो पीछे जो छोड़कर जा रहा है, जो तेरे पास है उसमें से खर्च किया वो तो तेरा हो गया, अब कब मौत आ जाए कोई पता नहीं, अब ये माल तेरा नहीं, ये माल तो किसका है, वारिस का है। उससे तू मोहब्बत करे तो तेरे मोहब्बत करने का कोई फायदा नहीं है। ये तुम में से कौन है जिसे अपने माल, वारिस का माल अपने माल से ज्यादा महबूब हो? मुहद्दिसीन ने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना अंदाज से सदका देने की तरगीब दी है कि देखो असल माल तो वही है जो माल, माल की मोहब्बत को अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक पसंदीदा जगहों में खर्च करे। अगर उसने इस तरह खर्च किया तो ये माल उसको कयामत के दिन काम आएगा, और उसके अलावा जो भी माल पीछे रह गया वो उसका नहीं, वो तो वारिस लोग माशाल्लाह मजे करेंगे, खाएंगे पिएंगे जी, ये चीज है। इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। मैंने उस दिन सुनाया था तफसीर में कि एक बच्चा स्कूल जाता था और स्कूल से टीचर ने कहा कल तुम्हें फीस पे करना है, स्कूल की फीस पे करना है। अब उसके बाप का तो इंतकाल हो गया था, सीधा स्कूल से दफ्तर लेकर कहां पहुंच रहा है, अपने चोपड़े लेकर, बुके लेकर कब्रिस्तान जा रहा है। बाप की कब्र के पास, बच्चा है छोटा, बाप की कब्र के पास बैठ कर कह रहा अब्बा कब तू निकलना, कल मेरे साथ, क्योंकि टीचर ने कहा है कल फीस को लेकर आना है, अगर फीस नहीं लाया तो अब्बा को लेकर आना। अब मेरे पास फीस तो नहीं है अब्बा, लेकिन तुम निकलो कब्र से और मेरे साथ चलो स्कूल में, मैं क्या जवाब दूंगा टीचर को, अब गरीब लोग हैं जी। तो उसकी पड़ोस की कब्र पर दूसरा आदमी बैठा हुआ फोन कर रहा है, किसके लिए, एक फ्लावर चादर बहुत महंगी अपने बाप की कब्र पर डालने के लिए ऑर्डर कर रहा फोन से कि भाई ये कब्र नंबर है, यहां पर हमें चाहिए कि फ्लावर की इतनी बड़ी चादर हो, बड़ी हो, जो बराबर इतनी महंगी हो, इतने हजार रुपए की है। उसने उस बच्चे की बात सुनी, उसने उस बच्चे की बात सुनी तो उसने क्या किया, फोन किया भाई मेरी ये फ्लावर की चादर है कैंसिल करो, मेरी डील को कैंसिल करो, और उसने वही पैसे जो पास थे उसने जाकर उस बच्चे को दिए, कहा ये तेरे अब्बू ने भेजे हैं स्कूल में फीस पे करने के लिए, जा दे देना, तेरे अब्बू ने भेजे हैं। अंदाज भी देखो कहने का उसका, वो बच्चा कितना खुश हो गया होगा और इसको अल्लाह के कितना बड़ा दर्जा मिला होगा कि बच्चे को खुश कर दिया। और बच्चे का काम, वो उसका बाप कहां से कब्र से उठकर आने वाला था, बात सुना रही। तो आज हम लोग इतनी ऐसी रस्म और रिवाज में इतना खर्च करते हैं, दूसरी तरफ काश के हम किसी गरीब बच्चियों की शादी करा दें, किसी गरीब बच्चों को, यतीमों को हाफिज बना दें, आलिम बना दें, सही रास्ते में उसकी फीस पे कर दें, उसके मदरसे के खर्चे दे दें, या उसके कपड़े बनवा दें, कुछ किताबें दिलवा दें, उसको कुछ कुरान की जरूरत दिलवा दें। हजारों ऐसे हैं, काश के हमें पता होता, काश के हमें पता होता। इसलिए मैंने पहले एक वाक्य आपको सुनाया था, बात तो वक्त तो खत्म हो गया है, आप वाक्य सुनाया था कि एक आदमी, वो उसकी माँ बिल्कुल इमरजेंसी में थी, आईसीयू में थी ना, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ये जिएगी नहीं। तो एक ही बेटा अकलौता का, चलो अभी आईसीयू में मैं घर खाकर आता हूँ, खाना दोपहर में घर गया और लंच खाकर वापस जा रहा था, कहा मैं पेट्रोल स्टेशन पर मैं पेट्रोल पुरा लूं अपनी गाड़ी में, आजकल तो पेट्रोल भी नहीं है, और पेट्रोल पुरा लूं और आगे चलता हूं। वहां पर जाकर देखा, पेट्रोल को डाला, देखा छोटे दो बिल्ली के बच्चे हैं, वो मद खा रहे, कीचड़ खा रहे, भूख की वजह से कीचड़ खा रहे, बिल्ली के छोटे छोटे कीचड़ जिसको कहते हैं बच्चे, वो कीचड़ खा रहे हैं। तो उसने अंदर में जाकर के वो जो कैन होता है ना, उसने दो कैन खरीदे और दोनों बच्चों के सामने खोल के डाल दिए। हालांकि उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसका मुझे क्या मिलेगा, बस उसने बच्चों पर रहम किया, बिल्ली के बच्चों पर रहम किया, खिला दिया, और बस वापस गाड़ी में बैठा, हॉस्पिटल में गया तो आईसीयू में तो उसकी मां नहीं है, इसकी माँ ही नहीं है। वो रोने लगा, शायद इंतकाल कर गई, मोचरी में भेज दिया। वो नर्सिस को पूछा, मेरी अम्मी किधर है, फरमाया नॉर्मल वार्ड में है। जाकर अम्मी के पास गया, क्या हुआ, तो अम्मी तो बैठी बैठी सूप पी रही है, कुछ खा रही है। पूछा, अम्मी ये कैसे हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, फरमाया मेरी आंखें बंद थी तो मैं देख रही थी कि दो बिल्ली के बच्चे दोनों पैर उठाकर मेरी तरफ देख रहे थे। वो बिल्ली के बच्चों की दुआएं अल्लाह ने सुन ली, वो तो दुआएं नहीं करते लेकिन अल्लाह तो सुनता है ना, तो अल्लाह ने उसके सदके उसकी मां को शिफा दे दिया। अब कहां से कहां मसला, वो बिल्ली के बच्चे को पानी पिलाया तो एक प्रोस्टिट्यूट वुमन जो हराम काम जीना करती थी जन्नत में चलेगी, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में, और बिल्ली को खाना न देने पर तहज्जुद गुजार औरत जन्नत में जा रही, हदीस में मालूम होता है। जानवर पर इतना रहम करें, अगर इंसान पर रहम करें, गरीबों पर रहम करें, यतीमों पर रहम करें, बेवाओं पर रहम करें, तो अल्लाह कितना देगा, उसका तो अंदाजा नहीं कर सकते इंसान। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। फिर आइंदा हफ्ते कुछ और बयान करेंगे इसी बात को इंशाल्लाह खर्च करने पर। अल्लाहुम्म सल्ली अला, अल्लाहुम्म या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लि जलाली वजहिक वलि अज़ीम सुल्तानिक या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान। अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा, गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह जो भी कमी कोताही होती हो हमारी इबादतों में, ऐ अल्लाह तू माफ़ फरमा, या अल्लाह रियाकारी से हम सब की हिफाजत फरमा, रियाकारी से हम सब की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह जो भी अल्लाह के रास्ते में जितना खर्च करे अल्लाह उसको मजीद अता फरमा, ऐ अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत बना दे। या अल्लाह या रहमान जो बात कही गई सुनी गई हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह या रहमान या रहीम या अकरमुल अकरमीन, या अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारी आल औलाद की मग़फ़िरत फरमा, बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमा, अकारीब और रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह इस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह जहाँ जहाँ लोग मिक्सर के जरिए या अल्लाह सुन रहे हैं, घरों पर सुन रहे हैं, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह मेरे मोहसिनीन की मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह एहसान करने वालों की मग़फ़िरत फरमा, मोहब्बत रखने वालों की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह या रहमान या रहीम या अकरमुल अकरमीन, या अल्लाह, ऐ अल्लाह इस तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की बरकत से, हदीसों की बरकत से, या अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत की جائز تمنائیں پوری فرما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما, ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, حافظ قرآن بنا. اے اللہ قرآن یاد کرنا یاد رکھنا آسان فرما, قرآن کو سینے میں جما دے. اللہ العالمین عالم دین بنا, ابرار و متقیوں میں سے بنا, ہماری نسلوں میں ایمان کو جاری ساری فرما. اللہ حفظ قرآن کو جاری ساری فرما, علماء اور صلحاء پیدا فرما, مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما, جب موت آئے ایمان پر موت نصیب فرما, خاتمہ بالخیر نصیب فرما, مرنے کے بعد جتنے حالات ہیں سب کو آسان فرما اور بغیر حساب کو جنت میں داخل فرما. یا اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما, جو بھی پریشان حال ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جس لائن سے پریشان ہو اپنی اولاد کے اعتبار سے, اپنے گھروں کے اعتبار سے, اپنی صحت کے اعتبار, اپنی ہیلتھ کے اعتبار سے, اللہ سب کو عافیت نصیب فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, سب کی پریشانی دور فرما. اے اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم.